بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کے سورہ زحا کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قاری ہیں ہاشم روغنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے، اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگر ہی آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، और आपको मार्ग से दूर पाया तो गंतव्य तक नहीं पहुंचाया, और आपको निर्धन पाया तो समृद्ध नहीं कर दिया। अतः अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए, तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज मंगलवार है, खुरदाद की 3, शव्वाल की 23 और मई की 24 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीति चर्चा, उसके बाद हम आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो दोस्तों, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि विश्व समुदाय की चुप्पी ने इसराइल को अधिक दुस्साहस बना दिया है। IRGC के चीफ कमांडर ने कर्नल खुदाई की हत्या का बदला लेने का संकल्प दोहराया है। इराक में अमरीकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। मध्य पूर्व के कई देशों में रेतीली आंधी के चलते आसमान नारंगी हो गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि सीरिया में ज़ायोनी शासन के लगातार हमलों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर विश्व समुदाय की चुप्पी ने इस शासन को अधिक दुस्साहस बना दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा, अमरीका के समर्थन ने इसराइल को इतना दुस्साहस बना दिया है कि वो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइल ने हालिया वर्षों में सीरिया के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं और इस अरब देश के नागरिकों को भी निशाना बनाया है। खतीबजादे का कहना था कि इसराइली वायुसेना ने सीरिया संकट के दौरान एक आतंकवादी वायुसेना की भूमिका निभाई है। जब कभी सीरिया में आतंकवादी गुटों की हार होती थी या उन पर दबाव बढ़ता था तो इसराइली वायुसेना सीरियाई सामरिक ठिकानों पर हमले करती थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि ईरान ज़ायोनी शासन के अत्याचारों की निंदा करता है और उसके अपराधों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने की मांग करता है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान की पासदारा ने इंकलाब फोर्स IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कमांडर हसन सैयद खुदाई की हत्या के संदर्भ में कहा कि इंतकाम बहुत सख्त होगा और बदला जरूर लिया जाएगा। जनरल सलामी ने सोमवार की रात एक भाषण देते हुए कहा कि ईरान की जनता और आर्म फोर्सेस अपने सारे प्यारे शहीदों के खून का बदला लेंगी और दुश्मनों पर हमारा जवाबी हमला बेहद घातक होगा। इससे पहले गृह मंत्रालय के सुरक्षा विभाग के प्रभारी मजीद मीर अहमदी ने भी कहा कि अपराधियों को याद रखना चाहिए कि ईरान का इंतकाम बहुत कठोर होगा और दुश्मन पछताने पर मजबूर होंगे। मीर अहमदी ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए एक टीम बना दी गई है जो जांच पूरी होते ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक कार्रवाइयां ज़ायनी शासन ने की है। ईरान के आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनरल हसन सैयद खुदाई की हत्या ये साबित करती है कि दुनिया में आतंकी गतिविधियों के योजनाकार अमरीका और इसराइल हैं।
इराक के सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट स्थित अमरीकी सैन्य अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेट हमला हुआ है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से इराक और सीरिया में स्थित अमरीकी सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन हमलों में वृद्धि हुई है। अमरीका का कहना है कि वो इराक में अपनी सैन्य उपस्थिति को जारी रखेगा। वाशिंगटन के इस ऐलान के बाद इराकी जनता और प्रतिरोधी गुटों ने देश से विदेशी सैनिकों को निकालने का संकल्प दोहराया है। साबरी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की सुबह बगदाद एयरपोर्ट के निकट स्थित विक्टोरिया सैन्य अड्डे में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद खतरे के सायरन बज उठे। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाकों की आवाज़ के बाद सैन्य अड्डे में एम्बुलेंसों के सायरनों की आवाज़ें भी सुनी गईं और सैन्य अड्डे के ऊपर हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी।
रेतीली आंधी की एक अभूतपूर्व लहर ने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया है, जिसके लिए विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मंगलवार को पिछले एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इराक, ईरान, सीरिया और कुवैत समेत मध्य पूर्व के कई देशों में रेतीली आंधी आने के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और कई जगहों पर सार्वजनिक स्थानों और हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। रियाद से तेहरान तक नारंगी आसमान और घने रेत की चादर ने सोमवार को एक और तूफानी दिन का संकेत दिया, जिसने नागरिकों को हतप्रभ कर दिया और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। इसके लिए इलाके में अभूतपूर्व सूखे, जलवायु परिवर्तन और खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इराक में इस रेतीली आंधी का असर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जहां सरकार ने देश भर में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो महीनों के दौरान सोमवार से शुरू होने वाली यह 10वीं रेतीली आंधी थी। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1000 से अधिक लोगों को सांस की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने इसराइल पर गहरी नाराजगी जताई है, जिसने यूरोपीय संसद की टीम को, जो अल जजीरा टीवी चैनल की पत्रकार शीरीन अबू आकिला की हत्या के मामले की जांच के लिए जाना चाह रही थी, वीजा देने से इनकार कर दिया। इस बीच फिलिस्तीनी प्रशासन के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सामने इस मामले की जांच की मांग उठा दी है। इसराइल ने इस मामले को करीब से देखने के लिए वेस्ट बैंक और गजा पट्टी का दौरा करने का इरादा रखने वाली यूरोपीय सांसदों की टीम को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा ने अपने विशेष बलों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है, जिसे इसराइली खेमे में हड़कंप मच गई है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास की सैन्य शाखा अलगसम ब्रिगेड ने अपनी सैन्य छावनी में जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के पोस्ट होते ही ये वीडियो वायरल हो गया। अलकसम ब्रिगेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया और कहा कि यह हमास के एक सैन्य छावनी पर किए गए अभ्यास का वीडियो है।
यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने ऐलान किया है कि सऊदी गठबंधन के ड्रोन को राजधानी सना के आसमान में मार गिराया गया है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। नेशनल सेल्वेशन गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ड्रोन नीचे गिरा तो उसकी चपेट में आने वाले 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 की बाद में मौत हो गई।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने टोक्यो शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि क्वाड बेहतर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए जापान के पीएम फुमियो किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। इस मौके पर मोदी का कहना था कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। क्वाड की संभावना बहुत व्यापक हो गई है। थोड़े समय में ही क्वाड ने अपनी अलग जगह बनाई है।
ٹوکیو میں کوارڈ دیشوں امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا کے شیرش نیتاؤں کی بیٹھک کے بیچ سوموار کو جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدا کے ساتھ ایک سنیکت پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو واشنگٹن سینیا ہستکشیپ کرے گا۔ حالانکہ بائیڈن کے اس بیان پر امریکہ اور دنیا بھر میں خوب ہو ہلا مچا تھا۔ بائیڈن کے بیان پر چین نے سوموار کو ہی آپتی درج کرائی تھی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شروتو، راج نیتک چرچا کے دینک کاریہ میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ ایران کے سواستھ و میڈیکل ایجوکیشن منتری ڈاکٹر بہرام عین اللہی کا جنیوا میں بڑی ویستتا والا دن رہا۔ سنیکت راشٹر سنگھ کے جنیوا استھت ہیڈ کوارٹر میں آیوجت کاریہ میں بھاگ لینے پہنچے ڈاکٹر عین اللہی نے دوسرے دن کئی وشیشج سمیتوں کی بیٹھکوں میں بھاگ لیا اور کئی دیشوں کے اپنے سمکچوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ڈاکٹر عین اللہی کا کہنا تھا کہ دشمنوں نے ہمارے علاقے میں جو حالات پیدا کر دیے اس کی وجہ سے چھیتریہ دیشوں کے آپسی سہیوگ میں کمی ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ اپنے اس علاقے میں فارس کھاڑی کے علاقے میں کئی دیشوں کے بیچ ایک کانفرنس ہو۔
متاسفانه در منطقه به دلیل اختلافاتی که
بنارس کی گیان وافی مسجد کے ساتھ ساتھ دلی کے قطب مینار کو بھی لے کر وواد چھڑا ہوا ہے اور دلی کی ایک عدالت نے دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد کہا ہے کہ 9 جون کو وہ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ ہندو پکش کی دلیل سننے کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ 800 سال سے قطب مینار کے پریسر میں پوجا ارچنا نہیں کی گئی ہے، آگے بھی رہنے دیجیے۔ اس سمے پوری دنیا میں آرتھک سنکٹ سے سمسیائیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ COVID-19 کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اب 2 سال گزر چکے ہیں۔ اس مہاماری کے دشپریڑاموں کا پربھاؤ ابھی بھی بہت سے چھیتروں میں باقی ہے۔ ایران کے سواستھ و میڈیکل ایجوکیشن منتری ڈاکٹر بہرام عین اللہی کا جنیوا میں بڑی ویستتا والا دن رہا۔ سنیکت راشٹر سنگھ کے جنیوا استھت ہیڈ کوارٹر میں آیوجت کاریہ میں بھاگ لینے پہنچے ڈاکٹر عین اللہی نے دوسرے دن کئی وشیشج سمیتوں کی بیٹھکوں میں بھاگ لیا اور کئی دیشوں کے اپنے سمکچوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ڈاکٹر عین اللہی کا کہنا تھا کہ دشمنوں نے ہمارے علاقے میں جو حالات پیدا کر دیے اس کی وجہ سے چھیتریہ دیشوں کے آپسی سہیوگ میں کمی ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ اپنے اس علاقے میں فارس کھاڑی کے علاقے میں کئی دیشوں کے بیچ ایک کانفرنس ہو۔ سمیکشا پیش کریں ساتھی احمد عباس۔
امروز روز خیلی پرکاری برای ما۔
ایران کے سواستھ و میڈیکل ایجوکیشن منتری ڈاکٹر بہرام عین اللہی کا جنیوا میں بڑی ویستتا والا دن۔ سنیکت راشٹر سنگھ کے جنیوا استھت ہیڈ کوارٹرز میں آیوجت کاریکرموں میں بھاگ لینے پہنچے ڈاکٹر عین اللہی نے دوسرے دن کئی وشیشج سمیتوں کی بیٹھکوں میں حصہ لیا اور کئی دیشوں کے اپنے سمکشوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ قطر کے سواستھ منتری سے ان کی ملاقات میں کئی وشیوں پر سہیوگ بڑھانے پر سہمتی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عین اللہی کا کہنا تھا کہ دشمنوں نے ہمارے علاقے میں جو حالات پیدا کر دیے ہیں اس کی وجہ سے کشیتریہ دیشوں کے آپسی سہیوگ میں کمی ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ اپنے اس علاقے میں فارس کھاڑی کے علاقے میں دیشوں کے بیچ ایک کانفرنس ہو. ڈاکٹر این اللہی کی دوسری ملاقات بھارتی سمکش سے ہوئی. دوا سازی، پارمپرک چکتسا اور آئی ٹی جیسے کھیتروں میں سہیوگ پر وشیش روپ سے بات چیت ہوئی. سواستھیہ منتری اس کے بعد ڈبلیو ایچ او کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کے لیے گئے، جنہیں دوسرے 5 سال کے ٹرم کے لیے اسی پد پر باقی رکھا گیا ہے. ٹیڈروس ادھانوم نے کورونا وائرس کی مہاماری سے مقابلے میں ایران کے پریاسوں کی سراہنی کی، اور ڈاکٹر این اللہی نے ایران پر لگے پرتبندھوں کو ہٹائے جانے کی ضرورت پر زور دیا. جنیوا سے آئی آر آئی بی کے لیے شہ سوار حسینی کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کارکرم راجنیتک چرچا.
بنارس کی گیان وافی مسجد کے ساتھ ساتھ دلی کے قطب مینار کو بھی لے کر وواد چھڑا ہوا ہے.
بنارس کی گیان وافی مسجد کے ساتھ ہی دلی کے ایتہاسک قطب مینار کو لے کر بھی وواد چھڑا ہوا ہے، جسے لے کر دلی کی ایک عدالت نے سبھی پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد اپنی سنوائی پوری کر لی ہے اور اب 9 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا. دلی کی ساکت عدالت نے ہندو پکش کی دلیل سننے کے بعد، جس میں اس نے قطب مینار پریسر میں سیمت استر پر پوجا کی مانگ کی تھی، کہا کہ پچھلے 800 ورشوں سے وہاں پوجا نہیں ہوئی ہے، آگے بھی رہنے دیجئے. ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ قطب مینار پریسر میں بنی قوۃ الاسلام مسجد کو 27 ہندو اور جین مندروں کو گرا کر بنایا گیا ہے. اس مسجد میں 2016 سے نماز شروع ہوئی تھی، لیکن اب نماز پر بھی پرتبندھ لگا دیا گیا ہے. قطب مینار پر وواد اس سمے شروع ہوا تھا جب بھارتیہ پراتتو سرویکشن کے پورو کھیتریہ ندیشک دھرمویر شرما نے دعویٰ کیا کہ قطب مینار کو مسلم شاسک قطب الدین ایبک نے نہیں بلکہ راجہ وکرمادتیہ نے بنایا تھا. دکشن پنتھی ہندو سنگٹھنوں نے، جن کا دعویٰ ہے کہ قطب مینار وشنو استمبھ ہے، قطب مینار پریسر میں پوجا ارچنا کی انومتی نہ دیے جانے کو لے کر کئی بار ویرودھ پردرشن کیا، جسے دیکھتے ہوئے سرکشا کے کڑے پربندھ کیے گئے ہیں. اسی بیچ بھارتیہ پراتتو سرویکشن نے قطب مینار معاملے کو لے کر اپنی دلیل عدالت میں پیش کر دی ہے، جس میں اس نے کہا کہ قطب مینار 1914 سے ایک سنرکشت سمارک ہے اور اب اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے. اے ایس آئی نے کہا ہے کہ ایک سنرکشت سمارک میں پوجا کرنے کی انومتی نہیں دی جا سکتی ہے. یاچیکا میں کہا گیا ہے کہ ہم اب عمارت کے سوروپ کو بدل نہیں سکتے، اور جس سمے اس عمارت کو سنرکشت عمارتوں کی سوچی میں ڈالا گیا تھا تب وہاں پر کوئی دھارمک گتیویدھی نہیں تھی. قطب مینار وواد کو لے کر سنسکرتی منترالے نے بھی اے ایس آئی کو اپنی کھدائی رپورٹ سونپنے کو کہا ہے. قطب مینار کے دکشن میں مسجد سے 15 میٹر کی دوری پر کھدائی شروع کی جا سکتی ہے، جس کے لیے سنسکرتی منترالے کے سچیو گووند موہن نے حال ہی میں قطب مینار پریسر کا نریکشن کیا تھا. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی.
اس سمے پوری دنیا میں آرتھک سنکٹ سے سمسیائیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. کووڈ 19 کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اب 2 سال گزر چکے ہیں. اس مہاماری کے دشپریڑاموں کا پربھاؤ ابھی بھی بہت سے چھیتروں میں باقی ہے. وشو کووڈ 19 کے دشپربھاؤں سے ابھی پوری طرح سے ابھر نہیں پایا تھا کہ یوکرین سنکٹ آرمبھ ہو گیا. سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی قائم رضوی.
ورتمان سمے میں وشو دوسرے مہایدھ کے بعد کی سب سے بری آرتھک استھتی سے گزر رہا ہے. اس سمے پوری دنیا میں آرتھک درشٹی سے سمسیائیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. کورونا یا کووڈ 19 کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اب 2 سال گزر چکے ہیں. اس مہاماری کے دشپریناموں کا پربھاؤ ابھی بھی بہت سے کھیتروں میں باقی ہے. وشو کووڈ 19 کے دشپربھاؤں سے پوری طرح سے ابھی تک ابھر نہیں پایا تھا کہ یوکرین سنکٹ آرمبھ ہو گیا. اس سندرب میں IMF کی پرمکھ نے کہا ہے کہ یوکرین سنکٹ سے دنیا کو مہنگائی اور آرتھک استھرتا کا سامنا کرنا پڑا ہے. شریمتی کرسٹیلینا جارجی ایوا نے کہا ہے کہ کورونا مہاماری, جلوایو پریورتن اور یوکرین سنکٹ نے وشو کو ابھوتپورو آرتھک سنکٹ میں ڈال دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس سمے سنسار دوسرے مہایدھ کے بعد سب سے بری آرتھک استھتی سے گزر رہا ہے. کورونا کے کارن بہت سے دیشوں کو اپنے سواستھ ایوم چکتسا بجٹ کو بڑھانا پڑا تھا, جس کے پرینام سوروپ اتپادن میں کمی ہوئی اور اس سے بے روزگاری میں وردھی ہوتی گئی تھا. بہت سی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں. کورونا نے وشو کی بڑی ارتھویوستھاؤں کو پربھاوت کیا ہے. اسی بیچ وشو بینک نے بھی آنے والے سمے میں دنیا کے لیے آرتھک سنکٹ کی بھوشیہانی کر دی ہے. وشو کے دیش کورونا مہاماری کے بعد اب اپنی ارتھویوستھاؤں کو ٹھیک کرنے کے پریاس کر رہے تھے. اسی بیچ یوکرین سنکٹ آرمبھ ہو گیا. روس اور یوکرین کے بیچ آرمبھ ہونے والی لڑائی نے پرستھتیوں کو ادھک جٹل بنا دیا. وشو بینک کا ماننا ہے کہ روس تتھا یوکرین کے بیچ ہونے والا یدھ وشو کے آرتھک وکاس کو بری طرح سے پربھاوت کر سکتا ہے. یہ وشو کے دیشوں کے سکل گھریلو اتپاد کو آدھے تک پر لا سکتا ہے. وشو بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ویشوک اتپادن اور ویاپار میں حالانکہ روس اور یوکرین کی بھاگیداری بہت ادھک تو نہیں ہے, کنتو وشیش بات یہ ہے کہ یہ دونوں دیش دینک آوشکتاؤں کی وستوؤں جیسے اناج اور ارجا کے مہتوپورن اتپادن کرتا ہے. نوینتم آنکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ روس تتھا یوکرین کے بیچ جاری یدھ ویشوک GDP کو 1.3 سے 0.7 کے بیچ پہنچا سکتا ہے. اس حساب سے سن 2022 کے دوران 3.7 سے 3.1 کے بیچ میں یہ رہ پائے گی. انتراشٹری مدرا کوش IMF کی پرمکھ نے وشو کے دھنوان دیشوں سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ ویاپار کی بادھاؤں کو دور کریں. انہوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیش اپنے سسٹم میں سدھار کر کے نردھن ایوم کمزور دیشوں کے لیے وکاس کے افسر اپلبدھ کروائیں. ان کا کہنا ہے کہ کھادیہ پدارتھوں اور ارجا کے مولیوں میں وردھی واستو میں چنتا کا وشے ہے. IMF کی پرمکھ کے انوسار ورتمان آرتھک سنکٹ نے وشو کے دیشوں وشیش کر تیسری دنیا کے دیشوں کے لیے وشم پرستھتیوں کو جنم دیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروع ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا قرآن قصے پر. اس سے پہلے خرم شہر کی آزادی کے اوسر پر سنیے ہمارا وشیش کاریکرم.
दोस्तों, ईरान के खुर्रम शहर की आजादी के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं. स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए.
खुर्रम शहर ईरान के खुजिस्तान प्रांत का एक शहर है. यह बंदरगाही शहर इराक के सीमा पर स्थित है. 26 अक्टूबर वर्ष 1980 को सद्दाम की अतिक्रमणकारी सेना ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था और 19 महीनों के बाद 24 मई वर्ष 1982 को ईरानी सेना ने महान ईश्वर की मदद से इस शहर को आजाद करा लिया। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान की एक सैनिक कार्रवाई का नाम बैतुल मुकद्दस था, जिसे ईरान की सशस्त्र सेना और सिपाही पासदारान ने मिलकर अंजाम दिया था। जब ईरानी सेना ने खुर्रम शहर को आजाद कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काफी प्रतिक्रियाएं हुईं। जब तक खुर्रम शहर इराकी सेना के कब्जे में था, तब तक वार्ता में ईरान पर दबाव डालने के लिए सद्दाम शासन इस नगर को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता था, पर जब ईरानी सेना ने खुर्रम शहर को आजाद करा लिया तो सद्दाम के हाथ से दबाव डालने का ये हथकंडा भी निकल गया।
इस नगर की आजादी पर स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने कहा था कि खुर्रम शहर को ईश्वर ने आजाद किया। खुर्रम शहर की आजादी ईरान इराक युद्ध में एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस शहर की आजादी से जहां ईरानी सेना और जियालों के हौसले बुलंद हो गए थे, वहीं सद्दाम की अतिक्रमणकारी सेना का मनोबल बहुत गिर गया था और उस वक्त वह अतिक्रमण से रक्षा व बचाव की मुद्रा में आ गई थी। खुर्रम शहर की आजादी के बाद ईरान ने अधिक से अधिक उन क्षेत्रों को स्वतंत्र करा लिया जिन पर सद्दाम की हमलावर सेना ने कब्जा कर लिया था। खुर्रम शहर की आजादी के लिए होने वाली लड़ाई में लगभग 16,000 इराकी सैनिक हताहत व घायल हुए, जबकि 19,000 इराकी सैनिकों को बंधक बना लिया गया।
वास्तव में खुर्रम शहर की आजादी ईरानी सेना की विजय का आरंभिक बिंदु था और उसके बाद से ईरानी सेना और जियालों के मनोबल बहुत बुलंद हो गए थे और इसी हौसले व मनोबल ने पूरे ईरान इराक युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार व अध्ययनकर्ता मसूद रजाई ईरानी राष्ट्र को मिलने वाली इस ऐतिहासिक विजय को प्रतिरोध की मजबूत भावना का परिणाम बताते हुए कहते हैं, साहसिक प्रतिरोध ने ईरानी जनता को बता दिया कि कठिनाइयों के मुकाबले में धैर्य व प्रतिरोध और ईश्वर के मार्ग में प्रयास दुश्मन के मुकाबले में विजय और क्रांतिकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण है। ईरान इराक युद्ध के अनुभव ने दर्शा दिया कि विजय प्रतिरोध में ही निहित है और प्रतिरोध के माध्यम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है।
ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद सद्दाम ने कुछ देशों व शक्तियों के उकसावे में आकर ईरान पर व्यापक पैमाने पर हमला कर दिया और इस हमले के दौरान उसे पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक का व्यापक समर्थन प्राप्त था। दूसरे शब्दों में बड़ी शक्तियों के समर्थन से ईरान पर युद्ध थोप दिया गया और ईरान पर कड़ा प्रतिबंध भी लगा दिया गया। यहां तक कंटीले तार भी ईरान को बेचने पर प्रतिबंध था। इसी प्रकार हर चीज को ईरान को बेचने पर प्रतिबंध था जिसके बारे में थोड़ा सा भी संदेह था कि इस चीज का प्रयोग सैनिक कार्यों के लिए हो सकता है।
इसी प्रकार ईरान के इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले अमेरिका से जो हथियार खरीदे गए थे और उनके पैसों का भुगतान भी किया जा चुका था, अमेरिका ने उन हथियारों को भी ईरान को नहीं दिया। जिन कारणों से सद्दाम ने ईरान पर हमला किया था उसका एक कारण यही प्रतिबंध थे और वो ये सोच रहा था कि एक तरफ ईरान पर कड़ा प्रतिबंध है और दूसरी ओर उसे पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।
ईरान इराक युद्ध के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान ने बैलिस्टिक और गैर बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की। यहां तक आज ईरान उन कुछ देशों की सूची में शामिल हो गया जो आधुनिकतम मिसाइलों से संपन्न हैं। ईरान के पास अब ऐसे मिसाइल हैं जो सटीक रूप से अपने लक्ष्यों को भेदते हैं। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उनमें से अधिकांश की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर जबकि कुछ की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। तकनीक और मिसाइलों के क्षेत्रों में ईरान की प्रगति दुश्मनों की चिंता का कारण बनी है। ईरान की रक्षा क्षमता के बारे में रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी मैक्सिम शुचिंग को कहते हैं कि ईरान के पास क्षेत्र की सबसे मजबूत व शक्तिशाली सेना है और देश की सेना विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम मिसाइलों के निर्माण में सफल हो गई है और हम इस बात के साक्षी हैं कि सैन्य अभ्यासों के दौरान ईरानी सेना उनका प्रयोग कर रही है।
अनुभव इस बात के सूचक हैं कि किसी भी देश या इंसान के अंदर की जो निहित योग्यताएं होती हैं वे कठिनाई में निखर कर सामने आती हैं। ईरान की सशस्त्र सेना और शूर वीर जवानों ने खुर्रम शहर की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी उन्हें इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है और ये विजय आज भी ईरानी राष्ट्र की शौर्य गाथा सुना रहा है और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। खुर्रम शहर की आज़ादी इस बात की सूचक है कि ईरानी राष्ट्र कभी भी किसी देश के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। दुश्मनों विशेषकर अमेरिका की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और दबाव जारी हैं और इन प्रतिबंधों से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए ईरानी राष्ट्र आगे बढ़ा है और अदम्य साहस के साथ उसका प्रतिरोध इस बात का सूचक है कि चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है।
रोचक बात यह है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में ईरान ने जो ध्यान योग्य सफलताएं अर्जित की हैं और कर रहा है वे प्रतिबंधों के काल की है। ईरान की सशस्त्र सेना के प्रमुख जनरल बाकीरी ने खुर्रम शहर की आज़ादी से मिलने वाले अनुभवों की ओर संकेत किया और कहा कि ईरानी राष्ट्र ने 8 वर्षों तक प्रतिरोध करके दर्शा दिया कि उसने दुश्मनी की ओर से उत्पन्न की गई चुनौतियों और बाधाओं को सुनहरे अवसर में बदल दिया है।
31 शहरीवर 1359 हिजरी शमसी को अर्थात 21 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला आरंभ किया था और उसे पूरब और पश्चिम की शक्तियों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। यहां तक कि कुछ देशों ने सद्दाम को रासायनिक हथियारों से भी लैस कर रखा था। ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम को पूरा विश्वास था कि कुछ ही दिनों के भीतर वो ईरान पर कब्जा कर लेगा और जब इस हमले के आरंभ में किसी पत्रकार ने उससे सवाल करना चाहा तो उसने बड़े विश्वास और घमंड से कहा था, 1 हफ्ते बाद मैं तेहरान में साक्षात्कार दूंगा, पर उसका ये स्वप्न 8 वर्षों में भी पूरा न हुआ।
खुर्रम शहर की आज़ादी के दौरान ईरानी राष्ट्र ने जिस एकता व एकजुटता का प्रदर्शन किया वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है और वे पूरी ताकत और साहस के साथ दुश्मनों के मुकाबले में डट गए और दुनिया की किसी भी शक्ति से भयभीत नहीं हुए। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की सशस्त्र सेना और शूरवीर जवानों में प्रतिरोध की मजबूत भावना और उनका ऊंचा मनोबल इराकी सेना की एक के बाद एक दूसरी पराजय का कारण बने, यहां तक कि सद्दाम और दुश्मनों के सारे समीकरणों पर पानी फिर गया।
ईरान के इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खमेनेई ने सुरक्षा बलों के कमांडरों को संबोधित करते हुए प्रतिरक्षा काल को ईरानी राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा का कारण बताया और बल देकर कहा कि ईरान इराक युद्ध में काफी जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा, परंतु इस युद्ध से ईरानी राष्ट्र को जो उपलब्धियां हासिल हुई उनकी कीमत उससे बहुत अधिक है जिसका नुकसान ईरानी राष्ट्र को सहना व उठाना पड़ा। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध ने दर्शा दिया कि भारी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियों के सामने डटा हुआ प्रतिरोध किया जा सकता है और इस प्रतिरोध ने इस्लामी और गैर इस्लामी देशों में बहुत सी हस्तियों और लोगों के विचारों को परिवर्तित कर दिया।
इसी प्रकार ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि प्रतिरक्षा काल की उपलब्धियां एक पूंजी है और दुश्मन चाहता है कि उन्हें भुला दिया जाए। सर्वोच्च नेता ने कहा कि प्रतिरक्षा काल को न केवल भुलाया नहीं जाना चाहिए बल्कि विभिन्न अवसरों पर उसकी याद दिलाई और उस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।
ईरान इराक युद्ध के दौरान पश्चिमी व यूरोपीय देशों विशेषकर अमेरिका ने सद्दाम का व्यापक समर्थन किया और सद्दाम ने ईरानी राष्ट्र के खिलाफ जो भी अपराध किए उसकी अमेरिका ने न केवल कभी भर्त्सना तक नहीं की बल्कि उसका प्रोत्साहन भी करता रहा और उसे आधुनिकतम हथियारों से लैस करता रहा। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाना व लड़ाना वो नीति है जो आज भी जारी है और विदेशियों का हस्तक्षेप क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
ईरान ने सद्दाम द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने रक्षा उपकरणों को समय की चुनौतियों के अनुसार बना लिया। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अपने बयानों में बारंबार इस बात को बल देकर कहा है कि ईरान की इस्लामिक व्यवस्था की प्रतिरोधक शक्ति ने दुश्मनों के अंदर से ईरान पर हमले के विचार को निकाल दिया। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता ने स्पष्ट किया है कि दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि अगर वे ईरान पर अतिक्रमण का दुस्साहस करेंगे तो उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और संभव है कि वे युद्ध का आरंभ करें परंतु युद्ध की समाप्ति उनके हाथ में नहीं होगी।
ईरान की सैन्य क्षमता में वृद्धि और मजबूती इस बात की सूचक है कि ईरान की सशस्त्र सेना दुश्मनों की समस्त चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और स्वयं ईरान की सशस्त्र सेना की तैयारी दुश्मनों की निराशा व चिंता का कारण बन गई है। राजनीतिक मामलों के एक विशेषज्ञ शहाब शाबानी निया कहते हैं, ईरान को दुनिया की चौथी मिसाइल शक्ति के रूप में देखा जाता है और ये इस बात का कारण बनी है कि दुश्मन ईरान पर हमला करने से पहले ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जरूर सोचेगा।
बहरहाल खुर्रम शहर की आज़ादी पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि ईरान अपने देश की रक्षा में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लेगा और विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियां ईरान को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले परंतु ईरान ने कभी भी विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियों के सामने न तो घुटने टेके हैं और न ही टेकेगा और खुर्रम शहर की आज़ादी ने यह साबित कर दिया कि जंग में सबसे निर्णायक चीज हथियार नहीं बल्कि हौसले होते हैं और विजय उसे मिलती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं और खुर्रम शहर की आजादी इसका मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से।
दोस्तों साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आशा है हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आएगा। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरे इसरा की 76वीं और 77वीं आयतें कब नाजिल हुई थी।
दोस्तों, सही और अच्छे ढंग से की जाने वाली पवित्र कुरान की तिलावत हमेशा प्रभावी रही है। यहाँ तक कि जब पैगंबर इस्लाम के काल में भी पवित्र कुरान के सुंदर ढंग से तिलावत की जाती थी तो जंग लगे काफिरों और अनेकेश्वरवादियों के दिलों पर भी असर डालती थी। उसकी असल वजह यह है कि वो महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की वाणी है। उसकी तिलावत हर चीज को प्रभावित करती और उस पर असर डालती है। पवित्र कुरान की सुंदर तिलावत इस प्रकार काफिरों के दिलों को भी प्रभावित करती थी कि उनमें से बहुत से चुपके से ईश्वरीय धर्म इस्लाम स्वीकार कर लिया करते थे।
अलबत्ता ये बात उन काफिरों और अनेकेश्वरवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी जो इस्लाम धर्म के मुखर विरोधी थे। उन्होंने इस्लाम से मुकाबले के लिए पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर देने का फैसला किया, परंतु महानेश्वर की इच्छा से उनके षड्यंत्र से पर्दा हट गया और उनके षड्यंत्र की खबर पैगंबर इस्लाम के चाचा हजरत अबू तालिब तक पहुंच गई। उन्होंने अपने पूरे खानदान वालों को बुलाया और सबसे कहा कि पैगंबर इस्लाम की जान की रक्षा करें, और सब शेबे अबी तालिब में पैगंबर इस्लाम के पास जमा हो गए।
शेबे अबी तालिब मक्का में दो पहाड़ों के बीच एक मोहल्ले का नाम है। शेब का अर्थ होता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। पवित्र नगर मक्का दो पहाड़ों के बीच में स्थित है। इस नगर में रहने वाले लोग बाढ़ आदि से मुकाबले में दोनों तरफ के पहाड़ों का प्रयोग प्राकृतिक रुकावट व दीवार के रूप में करते हैं और अपने घरों को वहां बनाते थे। मस्जिदुल हराम अर्थात काबे के समीप तीन शेब मौजूद थे जिनके नाम इस प्रकार थे, शेबे अबी तालिब, शेबे बनी हाशिम और शेबे बनी आमिर, और पैगंबर इस्लाम के पूर्वज और निकट संबंधी प्रायः इन्हीं तीनों में रहते थे। पैगंबर इस्लाम जिस घर में पैदा हुए थे उसे मौलूदन नबी के नाम से जाना जाता था।
आरंभ में ये स्थान काबे के पूरब में था और उस क्षेत्र को शेबे मौलाद कहा जाता था, और पैगंबर इस्लाम की महान धर्मपत्नी हजरत खदीजा का मकान भी इसी शेब में था। आज सुकुलेल नाम से इस मोहल्ले का एक छोटा सा भाग बाकी बचा है और उसके बाकी हिस्सों को मस्जिदुल हराम और दूसरे स्थानों में विस्तार के बहाने ध्वस्त कर दिया गया। कुरैश कबीले के सरदारों को जब यह ज्ञात हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के समस्त बेटे पैगंबर इस्लाम की रक्षा पर एकमत हैं और वे सब शेबे अबी तालिब में पैगंबर इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, तो सब ने इस्लाम के प्रचार और प्रसार को रोकने और उससे मुकाबले के लिए पैगंबर इस्लाम का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने एक समझौता भी लिखा और उस पर कबीलों के बड़े बड़े सरदारों ने हस्ताक्षर किए और उसे खाने काबा के अंदर लटका दिया और सबने कसम खाई कि जिंदगी की आखिरी सांस तक इसके प्रति कटिबद्ध रहेंगे।
इस समझौते में जो बातें लिखी गई थीं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे जो लोग शेबे अबी तालिब में रहते हैं उनके साथ कोई विवाह नहीं करेगा और उसका समर्थन किया जाएगा जो पैगंबर इस्लाम का विरोधी होगा। जो भी पवित्र नगर मक्का में दाखिल होगा उसे बनी हाशिम से लेन देन का अधिकार नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा करता भी था तो उसके माल को हड़प लिया जाता था। मुसलमानों को केवल हज के मौसम में शेबे अबी तालिब से बाहर निकलने की अनुमति थी। पैगंबर इस्लाम शेबे अबी तालिब में थे और जब हज का मौसम आया तो वे शेबे अबी तालिब से बाहर निकले और जिसे भी देखते थे उसे ईश्वरी धर्म इस्लाम की ओर आमंत्रित करते थे।
पवित्र नगर मक्का के काफिरों ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और वे हजरत अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा कि अपने भतीजे को हमें दे दें और अब उसका जिंदा रहना हमें बर्दाश्त नहीं है। हजरत अबू तालिब ने बड़ा करारा जवाब काफिरों को दिया जिससे उन सबको बड़ी निराशा हुई, परंतु स्वयं हजरत अबू तालिब को हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि आधी रात को पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर दें। इसी भय की वजह से वह हर रात अपना बिस्तर पैगंबर इस्लाम के बिस्तर के बगल में लगाते थे और उनके बिस्तर के दूसरी तरफ अपने बेटों में से किसी एक का बिस्तर लगाते थे। इस प्रकार से वह पैगंबर इस्लाम के बिस्तर को बीच में करते थे और कभी कभी सोने के समय पैगंबर इस्लाम से कहते थे कि वह अपनी जगह पर सो जाएं। और जब वह सो जाते थे तो अपने बेटों व भाइयों में से किसी एक से कहते थे कि वह अपने सोने की जगह को पैगंबर इस्लाम की जगह से बदल लें। हजरत अबू तालिब ने जब एक रात को हजरत अली अलैहि सलाम को पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पर सोने के लिए कहा तो उन्होंने हजरत अबू तालिब से कहा कि हे पिता, क्या मैं मार दिया जाऊंगा? हजरत अबू तालिब ने अपने बेटे के जवाब में एक शेर पढ़ा जिसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरे बेटे इस परीक्षा में धैर्य से काम ले क्योंकि धैर्य अक्लमंदी का रास्ता है। हर जीने वाले को अंत में बढ़ना ही है। तुमको इस कड़ी परीक्षा में उस व्यक्ति की कुर्बानी करार दिया हूं जो शरीफ और शरीफ का बेटा है।
शेब अबी तालिब में बहुत ही कठिन हालात में दिन गुजर रहे थे। यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए। भूख प्यास का सामना करना पड़ा। भूख से बच्चे रोते बिलखते थे। उनके रोने की आवाज़ कुरैश के कानों तक जाती थी। उनमें से कुछ इस बात पर अपनी नाराजगी को खुल्लम खुल्ला बयान करते थे कि कहाँ से उन्होंने अत्याचारपूर्ण समझौते को स्वीकार कर लिया। इस बीच महान ईश्वर के विशेष फरिश्ते जिब्राइल नाजिल हुए और उन्होंने पैगंबर इस्लाम को बता दिया कि दीमक सारे समझौते को खा गई है और पैगंबर इस्लाम ने ये बात हजरत अबू तालिब से बता दी। हजरत अबू तालिब ने जैसे ही ये बात सुनी तुरंत अपने भाइयों के साथ काबे में आए और कुरैश के काफिरों को संबोधित करते कहा, मेरा भतीजा कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे बताया है कि तुमने जो समझौता लिखा था उस पर महान ईश्वर ने दीमक बिठा दिया था और वो सारे समझौते में जो कुछ लिखा था उसे खा गई। इस समझौते में महान ईश्वर के नाम के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा है और जो बातें मेरे भतीजे ने कही हैं अगर वो सही हैं तो अपने दुर्व्यवहार को खत्म कर दो और अगर उसने झूठ कहा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस पर काफिरों ने कहा कि तुम सही बात की हो। इसके बाद समझौता मांगा कर उसे खोला गया। देखा तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा पैगंबर इस्लाम ने कहा था। मक्के के काफिरों के पास हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात को स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने समझौते को खत्म कर दिया। इस तरह शेब अबू तालिब की घेराबंदी खत्म हो गई और पैगंबर इस्लाम और बनी हाशिम के दूसरे लोग शेब अबू तालिब से बाहर निकले और मक्का में अपने अपने घरों को चले गए। बनी हाशिम के लोग जब शेब अबू तालिब से बाहर आए तो कुछ दिनों में उनकी स्थिति थोड़ा बेहतर हो गई, परंतु उसके बाद पैगंबर इस्लाम के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिससे पैगंबर इस्लाम को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने पैगंबरी की घोषणा के 10वें साल का नाम आमुल हुज़्न अर्थात गम का साल रख दिया। बेसत के 10वें साल सबसे पहले हजरत अबू तालिब का और उसके कुछ ही दिनों के बाद पैगंबर इस्लाम की वफादार और महान धर्मपत्नी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का भी स्वर्गवास हो गया और पैगंबर इस्लाम ने इन दोनों महान हस्तियों को अपने पूर्वज अब्दुल मुत्तलिब की बगल में दफन कर दिया। पैगंबर इस्लाम अपने चाचा के बारे में फरमाते हैं, जब तक अबू तालिब जिंदा थे तब तक हम कुरैश की यातनाओं से सुरक्षित थे।
दोस्तों, यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वह ये कि हजरत अबू तालिब के ईमान के बारे में कुछ मुसलमानों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और वे हजरत अबू तालिब को मुसलमान नहीं समझते हैं, जबकि वास्तविकता और सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। जो मुसलमान हजरत अबू तालिब के ईमान में संदेह करते हैं और उन्हें मुसलमान नहीं समझते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर हजरत अबू तालिब मुसलमान नहीं थे तो वे क्यों पैगंबर इस्लाम का समर्थन करते थे? 3 सालों तक शेब अबी तालिब ने अपनी सारी कठिनाइयां पैगंबर इस्लाम के साथ क्यों सहन की? हर रात को अपना बिस्तर पैगंबर इस्लाम के बिस्तर के पास क्यों लगाते थे और 3 वर्षों तक हर रात अपने किसी न किसी बेटे या भाई का बिस्तर भी पैगंबर इस्लाम के बिस्तर के पास लगाते थे। 3 वर्षों तक पैगंबर इस्लाम को अपने और अपने बेटों के बिस्तर के बीच में सुलाते थे। हजरत अबू तालिब 3 वर्षों तक पैगंबर इस्लाम का बिस्तर की जगह बदलते रहे और हर रात को उनके बिस्तर पर किसी न किसी को सुला देते थे। जब पवित्र नगर मक्का के काफिर पैगंबर इस्लाम के प्रचार प्रसार से थक गए थे और उन्होंने पैगंबर इस्लाम की हत्या का फैसला किया तो वे हजरत अबू तालिब के पास गए और कहा कि अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दीजिए। तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को काफिरों के हवाले करने से साफ मना कर दिया।
एक रात को जब हजरत अबू तालिब ने अपने प्राण प्रिय बेटे हजरत अली अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पर सोने के लिए कहा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, हे पिता, क्या मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा? तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम की शान में जो शेर पढ़ा उससे क्या नतीजा निकलता है। जिस साल हजरत अबू तालिब का स्वर्गवास हुआ उस साल का नाम पैगंबर इस्लाम ने आमुल हुज्न अर्थात गम का साल क्यों रख दिया? अगर हजरत अबू तालिब मुसलमान न होते तो पैगंबर इस्लाम उनके स्वर्गवास पर न इतना दुखी होते और न ही साल का नाम दुखों का साल रखते। अगर हजरत अबू तालिब का दिल ईमान से परिपूर्ण न होता तो वे क्यों काफिरों के जवाब में कहते कि अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दूं तब भी अपने भतीजे के समर्थन से पीछे नहीं हटूंगा? क्या ये चीजें इस बात की प्रमाण नहीं है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम न केवल मुसलमान थे बल्कि ईमान की प्रतिमूर्ति थे और पैगंबर इस्लाम ने विभिन्न अवसरों पर उनकी सराहना व प्रशंसा की है?
हजरत अबू तालिब के स्वर्गवास के बाद पवित्र नगर मक्का के काफिरों और अनेकेश्वरवादियों ने पैगंबर इस्लाम को पवित्र नगर मक्का से निकाल देने का फैसला किया, परंतु इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वे अपने फैसले में नाकाम हुए। यह वह मौका था जब महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने पैगंबर इस्लाम पर पवित्र कुरान के सूरे इसरा की 76वीं और 77वीं आयतें नाजिल की। इन आयतों में महान ईश्वर कहता है, कुछ बचा नहीं था कि मक्का के काफिर आपको मक्का से बाहर निकाल देते और अगर वे ऐसा कर देते तो आपके बाद वे कुछ ही समय तक रहते और उन्हें ईश्वरी दंड व अजाब का सामना होता। जिन लोगों को हमने आपसे पहले भेजा उसके बारे में यही हमारी सुन्नत व तरीका रहा है। हमारी सुन्नत में आप बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
तो श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
ہیں۔